भागवत के प्रसंग वृंदावन में प्रवेश करें। सभी ब्रह्मा के लिए ये जरूरी नहीं है। जिनकी भावना ऐसी होगी उन्हीं ब्रह्मा के लिए यह संभव है, सब ब्रह्माओं के लिए यह संभव पर नहीं। ये कितना अद्भुत है ये मंत्र है। नाम और मंत्र में भेद मत रखो, ऐसा मत समझो कि यह मंत्र संसार को केवल दूर कर देगा। कृष्ण नाम है तो है, कृष्ण कृष्ण मंत्र है तो है संसार मोचन, ये कहा गया दोनों के लिए। यदि ऐसी बात नहीं होती तो कृष्ण मंत्र के द्वारा केवल संसार का मोचन हो जाएगा, दुख दूर हो जाएंगे, विपत्तियां दूर हो जाएंगी। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो गुरु ईश्वर पूरीपाद के लिए, गुरु जी हमको आपने कैसा मंत्र दिया, मुझे पागल ये कर रहा है। मंत्र जपते जपते मैंने देखा एक सुंदर गोपाल वहां पर प्रकटित हो गया, बांसुरी बजा रहा था, अत्यंत मनमोहन उसका रूप, त्रिभंग रूप से वो खड़ा था। मैंने उसे देखा, लपक कर दौड़ा उसको पकड़ने के लिए, और वो धीरे धीरे पीछे पीछे हटते हटते मैं ज्यों ही एकदम निकट में गया, न जाने कहां अंतर ध्यान हो गया और मैं वहीं पर गिर पड़ा। मुझे होश नहीं, जब आंखें खुली तो देखा जी नहीं। इसलिए कभी मैं रोता हूं, कभी मैं हंसता हूं, कभी कुछ करता हूं। गुरु जी ये क्या कैसा आपने मंत्र दे दिया। उन्होंने कहा मंत्र का फल तो यही है, यही मंत्र का फल है, जो मंत्र कृष्ण रूप में बदल गया। तो बदलाव तो महामंत्र करने से तभी ऐसा ही होता है। इसलिए अभी हम लोगों के साधक जीवन में मंत्र को खूब श्रद्धा के साथ में जप करने की जरूरत है, अन्यथा ये अपना प्रकाश नहीं देगा। इसलिए ऐसा करते करते नाम क्या चीज है ये पीछे हम लोग इसका अनुभव करेंगे। हरे कृष्ण नाम ये साधारण नहीं, बहुत ही दुर्लभ, और इसमें समस्त भाव मंत्रों के सार इसमें भरे पड़े हैं। ऐसा सोच करके हरिनाम और ये कृष्ण मंत्र दोनों ठीक रूप में करना। उन्होंने बजाया यह और गोपियां अपने अपने घरों से दौड़ करके चली आई। इसका वर्णन संक्षेप में किया गया, अभी अधिक समय नहीं है, अभी बहुत श्रीमद्भागवत का अंश बाकी है। एक और चीज मैं बतलाऊं, गोपी गीत में हम लोगों ने यह श्लोक सुना और उसका वर्णन भी संक्षेप में हुआ, उसको और थोड़ा सा स्पष्ट रूप में समझो। अक्ष्मतां फलमिदं न परम विदा, मैं आंखों का फल कृष्ण दर्शन के अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं जानता। अक्षम फलमिदम न परम विदाम, इस बार सत्ता पशून अनुवेश यथोर्वयस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणुदुष्टम जैवानिपीतम अनुरक्त प्रकाशम। कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, राम इत्यादि सभी उनके साथ में हैं, कोटि कोटि गैयाएं चल रही हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। उस समय में कृष्ण अपनी आंखों से करुणापूर्वक दर्शन करते हुए देखते हुए कटाक्ष से पात कर रहे हैं गोपियों की तरफ में। सखियों यदि इस रूप को नहीं देखा तो आंखों का फल और दूसरा कुछ नहीं है, व्यर्थ गई आंखें। भगवान आंखें नहीं देते तो वो बल्कि अच्छा था, आंखों का तो फल यही एक है। यहां पर बतलाया गया ब्रजेश सुतयो अनुवेणु दुष्टम, साधारण ये अर्थ है ब्रजेश सुतयो, ब्रज के जो सुतयो दो लड़के हैं, ये दो वचन कौन, कृष्ण और बलदेव, राम और सुतयो। बलदेव जी को भी यहां पर नंदनंदन बनाया गया है, माना गया है, क्योंकि ये राम भी बलराम भी नंद बाबा को ही पिताजी पिताजी कहते थे। वो जानते नहीं थे कि वसुदेव जी हमारे पिता हैं, और जानने पर भी वो नंद बाबा को ही ऐसी श्रद्धा के साथ में अपने संपूर्ण रूप से पिताजी के रूप में मानते थे, और शास्त्र में भी ऐसा कहा गया। इसलिए यहां पर दोनों कृष्ण और बलदेव सुतयो ये गोपियां कर रही हैं, ये दोनों जो जा रहे हैं उनमें जो पीछे हैं आगे आगे बलदेव जी और पीछे पीछे कृष्ण, उनका यह मोक्ष कटाक्ष, उनसे जो कटाक्ष निकल रहे हैं और जो चल रहे हैं उनका रूप नहीं देखा तो ये जीवन बिछा गया, आंखें बिछा गई। पहले कहा दोनों के लिए, कृष्ण और बलदेव का जिन्होंने दर्शन नहीं किया उनकी आंखें विफल हुई। फिर बतलाया क्या, वो दोनों जो कृष्ण बलदेव जा रहे हैं गोपियों का उद्देश्य है कृष्ण, इसलिए जो पीछे आ रहे हैं और क्या करें अनुवेणु जुस्तम, जो वेणु बजाते हुए जो पीछे चल रहे हैं उनके कटाक्षों को जिन्होंने दर्शन नहीं किया आंखों का फल व्यर्थ गया, उनकी आंखें व्यर्थ हैं, उनको अंधा ही होना चाहिए। फिर कर रहे हैं, फिर उसका एक और गुण तात्पर्य कर रहे हैं, वो बतला रहे हैं ब्रजेश सुतयो, दो वचन हुआ ब्रजेश दो हैं, एक नंद बाबा हैं, एक शेर और एक सवा शेर हैं। एक शेर कौन है, नंद बाबा, और सवा शेर कौन है, ब्रजभान महाराज, ये दोनों ब्रजवासी हैं, ब्रजेश हैं। नंद बाबा की 9 लाख एक गायें और उनकी है 11 लाख गायें, नौ उनका एक गाय 2 लाख और अधिक गो ही संपत्ति है, गोधन, जिसको गोधन होगा वही बड़ा होगा। नंद बाबा को कितनी संतानें हैं,
एक
संतान, वो भी संदेहवाचक, वो भी संदेहवाचक, और विश्वभान महाराज की 3 पहली हैं श्री राम जी, दूसरी हैं श्रीमती जी, और तीसरी हैं अनंग मंजरी। तो इससे भी नंद बाबा से ये कम नहीं पढ़ते हैं, सभा से ही पढ़ेंगे। तो ब्रजेश सुतयो का तात्पर्य है सुतश्च सुताश्च सुतयो, कृष्ण ब्रजेश नंद नंदन के पुत्र हुए और राधा जी विश्वभानु महाराज की पुत्री हुई। एक सुता एक सुत, सुत कृष्ण और सुता ये राधिका जी, राधिका जी कृष्णचंद्र जी और रसस्वरूप कभी हैं यदि राधिका जी हैं, राधिका का बिना नहीं कुछ है, केवल मदन ही है। और जब राधिका जी होती हैं तो ये मदन मोहन होते हैं, इसलिए राधिका का होना जरूरी है ब्रज में कृष्ण के साथ में, इसलिए सुत से कृष्ण हुए और सुता से हुई राधा जी। इन दोनों का ब्रजेश सुतयो, इन दोनों का ही बोध होता है, राधा जी का भी और कृष्ण का भी, सुता और सुता सुतयो। इसलिए दोनों को यहां पर कह रहे हैं कि दोनों जब कृष्ण अकेले यदि कटाक्ष पात करें सुंदर हो, कृष्ण तो सुंदर है ठीक है, सखाओं के साथ में है तब एक तरह के सुंदर हैं, यशोदा मैया की गोदी में है तो एक तरह के सुंदर हैं, और गोपियों के बीच में है तो एक तरह से सुंदर हैं, और राधा जी के साथ में जब विलास पारायण है तब उनका सौंदर्य कितना है, सभी वो मनमत हैं। इसलिए यहां पर राधा जी के साथ में यदि कृष्ण को कटाक्षपात करते हुए कोई देखे, यही समस्त आंखों के फलों का चरम यह फल है, इसे बढ़कर के और कोई फल नहीं। ये इसका तात्पर्य है। इसमें और भी बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं, समय अभाव से अभी हम इसको प्रकट न कर सके, पीछे हम लोग। अब आप लोग श्रीमद्भागवत की कथा जहां से बंद हुई थी कल, और वहां से आप लोग सुन खूब सावधानी के साथ में सुनेंगे। पाठ से भी श्रवण कम नहीं, और मैंने पहले भी बतलाया था पाठक से श्रोता लोग भी कम नहीं। हो सकता है पाठकों से भी श्रोता लोग अच्छे गुण वाले और अधिक उन्नत हों, उनका स्वभाव है बड़े प्रेम के साथ में सुनते हैं, इसलिए बड़े प्रेम के साथ में कल से जहां कथा हमारी स्थगित हुई थी उसके बाद से आप लोग देवता लोग बड़े आनंदित थे, मथुरा के सभी लोग आनंदित हो गए, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, लोगों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, सभी लोग बड़े प्रेम से कीर्तन करने लगे। इसलिए हम लोग भी, कंस मारा गया, यादवों का कष्ट दूर हुआ, पृथ्वी का कष्ट दूर हुआ, इसलिए हम लोग थोड़े से कीर्तन यहाँ पर कर रहे हैं आप लोग। श्री कृष्ण गोपाल हरे हरे चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृतासुम्भुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरक्षिते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृष्यन् द्वैतायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
आप हमको कुछ बतलाइए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम अपना कल्याण चाहते हो। मन में मैं सोच रहे हैं, ओह कितने भगवान ये वसुदेव जी जिसके घर में पुत्र के रूप में कृष्ण पधारे हैं और ये कहते हैं ये हमारा कल्याण कैसे हो।
गोपियां कृष्ण के विरह में तप्त हैं, यह बात ठीक है, किंतु वो अपना भार कुछ हल्का कर लेती हैं, परस्पर बातें करती हैं। यदि नदी में खूब बाढ़ आए, खूब जोरों की बाढ़ आए, तो नदी अपने दोनों किनारे पर अपने अतिरिक्त जल को विभाग कर देती है और चारों तरफ में फैल जाती है, उसका भार कम हो जाता है। यदि किसी के हृदय में कोई गंभीर वेदना हो, दुख हो, यदि वो किसी से कह ले अपने दुख को, कुछ कह दे, तो उसका दुख कुछ हल्का हो जाता है, अन्यथा वो व्यक्ति मारा जाएगा। गोपियां एक दूसरों से अपने दुखों को प्रकाश करती हैं, विरह की भावना, और इसी में वो लगी रहती। किंतु कृष्ण अपने दुख को किससे कहें, जो समभावापन्न हो उससे अपने दुख की बातें कही जाएगी। जो कि स्वजातीय नहीं है उसको नहीं कहा जा सकता। मथुरा में कृष्ण का कोई भी स्वजातीय नहीं है जिससे अपने दुखों को बतला सके। इसलिए सोचा उद्धव मेरा प्यारा सखा है, बहुत दिन हो गया हमारे साथ रहते, इसको अपने ज्ञान का और भक्ति का भी कुछ अभिमान है कि मैं कृष्ण का सबसे अधिक प्यारा हूं। यदि उद्धव को यदि वृंदावन में भेजें और उस पाठशाला में ये जाए जहां पर कि मैंने प्रेम की शिक्षा पाई है, और उस पाठशाला में जाकर अपना नाम लिखाए, कुछ दिनों तक पढ़े, शिक्षा पाए, तो वो हमारे कुछ बातों से करने के लिए हमारे समझाती हो सकेगा। मैंने जिसको अपना प्रेम का गुरु बनाया है श्रीमती जी को, किशोरी जी को, यदि प्रेम की दीक्षा उससे वो ले ले तो हम दोनों गुरु भाई हो जाएंगे। उद्धव जी मेरा गुरु भाई हो जाए और तब मैं उसको हृदय खोल करके उससे बातें कर सकूंगा। अभी इस समय बात नहीं कर सकता। उद्धव को सांत्वना देने के लिए नहीं भेजा, सांत्वना उद्धव के वाक्यों से हो भी नहीं सकता। वो तो होगा तो कृष्ण वाक्यों से ही ये संभव पर हो सकेगा। जैसी तैसी बातें उनको संदेश दिया, संदेश देकर के उन्होंने भेजा। वो गए ब्रज में, वो बड़ी निगूढ़ बातें थी। इधर रख करके जाओ, बड़ी निगूढ़ बातें थी। कृष्ण ने संदेशा भेजा अपने भावनाओं को गोपियों को सांत्वना देने के लिए। उद्धव जी ने जो समझा वो अपनी भावना से समझा, उन्होंने श्री कृष्ण की बातों को समझा या नहीं समझा ये कहा नहीं जा सकता। और गोपियों ने उसको सुनकर के कैसा अनुभव किया वो गोपियों की भावना के ऊपर। इसलिए कृष्ण ने एक भेजा, उन्होंने पियून की भांति, जैसे पियून मनी ऑर्डर लेकर के जाता है, कोई चिट्ठी ले जाता है, चिट्ठी पढ़ता नहीं और रुपये को अपने हजम नहीं करता, करने की सामर्थ्य भी नहीं है, अन्यथा वो जेल चला जाएगा। इसलिए उद्धव जी अपनी बात को मिला करके अपनी भावना के अनुसार में उसको नहीं कहा। कृष्ण ने जो कुछ संदेश दिया था जैसा नपे तुले वैसे ही शब्दों में उन्होंने गोपियों से कहा। किंतु उद्धव जी तो कोई जड़ व्यक्ति है नहीं, उन्होंने उस चीज को अपने अनुसार में समझा और गोपियां समझी क्या, वो अपने अनुसार में उसको समझी। इसलिए टीकाकारों ने इसके संबंध में ये सब बतलाया। उद्धव जी पहले तो नहीं समझे, किंतु 10 महीने तक उनका संग जब किया तो कुछ कुछ समझे। उद्धव पहले अपनी ज्ञान की गरिमा, ज्ञान की पोटली गठरी लेकर के गए। गोपियों ने ज्ञान गुदड़ी में उनकी गठरी को फाड़ फूड़ कर और जमुना में बहा दिया। और उन्होंने जब गोपियों के इन भावों को देखा जिसका भी वर्णन अभी किया गया भ्रमर गीता, भ्रमर गीत इत्यादि में, भ्रमर संदेश में देखा कि प्रेम के ये गोपियां इतनी ऊंची शिखर है, मानो एवरेस्ट से भी ऊंची हैं। ये ज्ञान की टोपी लगा करके गए थे, निकट में जाकर के देखा साढ़े तीन हाथ के उद्धव जी जबकि ऐसे देखा और 7 मील ऊंची एवरेस्ट की पहाड़ी ऊंची चोटी ऐसा किया तो टोपी नीचे से गिर गई। इतना ऊंचा इनका प्रेम मैं तो आज तक समझता नहीं था। मैं तो तत्वज्ञान लेकर कहीं विचार करता था। आज मैंने समझा ये प्रेम किसको कहते हैं। कुछ समझा किंतु अनुभव नहीं कर सका। ये ऐसी बात है। यदि उद्धव जी समझते गोपियों के प्रेम को इतना ये इतना ऊंचा है तो उद्धव जी ने ये प्रार्थना की आशा महो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदावने किमत गुलमल हो सकती। ये प्रार्थना से वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम। मैं पहले उन्होंने सोचा कि गोपियों की चरण की वंदना करूं किंतु वंदना करने में समर्थ नहीं हुए। फिर गोपियों की चरण धूलि की वंदना की। मैं इसकी वंदना भी नहीं कर सकता। मैं गोपियों की एक चरण रेणु की एक की केवल वंदना करूं। रेणु ये एक वचन है और एक वचन में वो राधा जी के चरणों की एक धूलि को ही बहुत दूर से जिस दिशा में है बस उसी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? वो भाव मेरे लिए हमारे स्वरूप में ही नहीं है। वृंदावन का गुल्म लता नहीं बन सकता। मैं उनकी धूलि को ग्रहण कर लूं या धूलि बन जाऊं ये भी संभव उनके लिए नहीं। प्रेम को मान लिया जाए अखंड वस्तु। उद्धव में धूलि के एक कणा भी होने की संभावना नहीं इसलिए धूलि की वंदना कर रहे हैं। हो नहीं सकते। यदि हो गए होते वहां की धूलि तो फिर प्रार्थना क्यों कर रहे। यहां की तृणलता गुल्मों को की वंदना कर रहे हैं कि इसलिए गोपियां अभिसार के लिए जा रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए बड़ी जल्दीबाजी में। उन्होंने गले का हार पहन लिया पैर में और कमर की करधनी पहन ली गले में। आधी आंख में अंजन ही लगा पाई। अस्त व्यस्त होकर के चल रही हैं। शुद्ध बुद्ध नहीं। आजगमु अन्यो अन्नम अलक्षितोद्यमा। कोई दूसरे किसी को नहीं देख सकी। बावरी बन गई चल पड़ी। तो कह रहे हैं जिससे ऐसा भाव से मेरे लिए संभव नहीं। शायद कृष्ण ने इन्हीं सब चीजों को देखने और समझने के लिए मुझको अवकाश दिया था। यही उसमें पढ़ रहे हैं अभी शिक्षा ले रहे हैं। वो भावना ब्रह्मा के लिए भी उद्धव के लिए नारद के लिए भी संभव नहीं है। प्रेस्थाई रपि और सुलभम उन लोगों के लिए संभव नहीं है। गोपियों का इतना ऊंचा भाव है इसलिए उसकी बहुत दूर से चरणों की वंदना कर रहे हैं उन भावों को अपने में संक्रमित करने के लिए किंतु संभव पर नहीं सका। इसका प्रमाण ये जबकि उद्धव जी अभी वर्णन में आएगा जब 10 महीने के बाद में सब सोचा विचार किया वो प्रेम की ये ध्वजा है गोपियां इनके समान भूतों न भविष्यत और कोई नहीं होगा किंतु इतना इनको दुख क्यों। कृष्ण के विरह में इतना तड़प रही हैं। कहीं मैं कृष्ण को छोड़ करके आया और मैं भी कृष्ण के विरह में ऐसे तड़पने लगूं तो यदि हमको भी छोड़ दे तो अब यहां हम नहीं रहेंगे। हम तो अब चलेंगे मथुरा में। गोपियों से पूछा बतला पूछा आप जब मैं आया ए तुम लोग मत करो जाओ तुम लोग चुपचाप रहो रख दो चुपचाप। मैं कृष्ण से यहां जाने के बाद में क्या कहूं। 10 बार पूछा गोपियों से मैं कृष्ण को यहां से जाऊंगा तो क्या कहूंगा। तुम्हारा संदेश तो कुछ चाहिए, उन्होंने तो बहुत कुछ संदेश दिया, तुम भी कुछ संदेश। राधा जी को कुछ कृपा हो गई उन पर, बोली जे देखो हमारा हृदय तो वज्र के समान है, आपने बार बार कहा कि कृष्ण तुम्हारे विरह में अत्यंत तड़प रहे हैं, किंतु यदि आप ये कहें कि गोपियां आपके विरह में तड़प रही हैं तो कृष्ण का हृदय नवनीत से भी कोमल है, वो एक सेकंड भी बचे नहीं रह सकते, इसलिए खबरदार उनको ये मत कहना कि गोपियां आपके विरह में तड़प रही हैं, बल्कि ये कहना गोपियां बड़े आनंद से हैं, खा पी रही हैं, बड़े आनंद से हैं, वो तो आपको भूल चुकी हैं, ऐसा कहना। और ऐसे कहना धीरे धीरे, एक दिन आज थोड़ा सा कहना, कल मेरे हम लोगों की विरह की बातें थोड़ी सी और बढ़ा करके कहना, 10 दिन के बाद में जब कृष्ण सुस्त होंगे तब फिर कहना, ऐसे कहना जैसे कोई पुराना कपड़ा हो और जल में भीग जाए और उसके जल को दूर करने के लिए जैसे ऐसे निचोड़ते हैं, यदि जोर से निचोड़ दे तो क्या होगा, कपड़ा फट जाएगा। तो कृष्ण का हृदय बड़ा कोमल है, यदि आपने हमारी विरह की बातों को कृष्ण को एक बार में सुना दिया वो प्राण धारण नहीं कर सकेंगे, इसलिए धीरे धीरे उनसे कहना। उद्धव जी सुन करके और भी चमक से हो गए, ऐसा प्रेम कानून का भाव हमने जगत में कभी नहीं सुना था, यह केवल मात्र भागवत का ही संदेश है। इसलिए और जगह हम देखते हैं कृष्ण की आराधना सभी करते हैं, किंतु कृष्ण ब्रज में आए और भागवत में जो वर्णन मिलता है इसमें सर्वत्र ही देखा जाता है, कभी अपनी मैया के पैया पढ़ते हैं, कभी गोपियों की पैया पढ़ते हैं, कभी कुछ करते ही वो आराधना करने के लिए आए थे। इसीलिए आराधिका माने ही होता है कृष्ण के द्वारा जो आराधित हैं, वो राधिका जी कृष्ण न आराधिका। उद्धव जी अब कुछ कुछ समझे और सब फिर वो गए, इसकी अनुभूति करना बहुत ही कठिन है। जब तक कि साधुओं के संग में, रसिक वैष्णवों के संग में, तात्विक वैष्णवों के संग में न रहा जाए तब तक श्रीमद्भागवत का एक भाव का भी अर्थ समझना बड़ा भारी कठिन है। यदि भागवत का अर्थ समझ लिया थोड़ा सा भी अनुभूति हो गई तो तब सुखदेव गोस्वामी की स्थिति हो जाएगी। हम लोग क्रमशः चलेंगे, इसको सुनेंगे, समय इतना नहीं है, अभी 5 बज गया, अभी दशम स्कंद की बहुत सी कथाएं रसमयी भरी पड़ी हैं, इसलिए मैं अपना वक्तव्य ही समाप्त करता हूँ। अब यहाँ से कथा आरंभ होगी और कल जैसा आज जहाँ तक हो सके दशम स्कंद पूरा करने की हम लोग सोच रहे हैं, नहीं तो सवेरे करके फिर दशम एकादश तक कल हम लोग समाप्त करेंगे, द्वादश तक, और परसों सवेरे पूर्णाहुति होगी, यज्ञ होगा, और शाम को बड़े बड़े भागवत, यहाँ के रसिक वैष्णव लोग हैं जो भागवत के बड़े बड़े विद्वान हैं वो लोग आएंगे, 4 बजे से उनका कार्यक्रम है, 4 से लेकर के 7 तक, 8 तक बड़े बड़े विद्वानों की सभा में, और सुंदर सुंदर सांस्कृतिक कार्य होंगे। आप सभी लोग जैसे योगदान कर रहे हैं और भी संख्या में आप लोग योगदान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का कुछ श्रवण किया, आप लोग उस सार रूप में श्रवण करें। एक बहुत ही बड़ा धनी आदमी था, करोड़ों पति अरबों पति था। देखो भाई, भागवत सुनने पर यहां पर ऋषि महर्षि लोग आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं, वहां पर माया देवी भी अपने पुत्र कलत्र स्त्री पुत्रों के साथ में आती है, और वो सबसे पहले आंखों पर बैठती है, लाखों मन का भार लेकर, ऐसे देखने में भार नहीं दिखता, आलस्य प्रमाद ये सब उनके लड़के हैं। और लड़कियां क्या है, जम्भाई, जम्भाई जो आती है ना, ये उनकी लड़कियां हैं। ऐसे कितने लड़के और लड़कियां उनकी, कथा सुनने में पहले आलस्य आया, वो आकर कहता जरा हाथ ऐसे बांध करके बैठो, फिर कोई ऐसे कहेगा कि ऐसे बैठ जाओ, कोई ऐसे बैठ जाएगा, आंखों पर लाख मन पत्थर बांध करके माया उस पर डाल दी। चाहे आप आंख ऐसा खोलने जाएं, वो आंख खोलने नहीं देगी। जितना भी सावधान करो, देखिए कि हमारे राज्य से ये निकल करके चले जाएंगे, बड़ा सुगम पथ है, ये भागवत श्रवण कर रहे हैं।
भजन पारायण होकर के दूसरों को सुनाए, पहले आदर्शवान चरित्रवान भजन पारायण होकर के दूसरों को सुनाए, आदर्शवान चरित्रवान भजन पारायण।